देखिए ये बातें जो भी पहली दफ़ा सुन रहा है उसको तासुब के ग्लासेस उतार के सुनना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम नूरुल कुरान से हमेशा कुरान सुन्नत ही की बात करते हैं। सही हदीस और कुरान पाक की हर आयत ये आपके मेरे लिए काबिले अमल भी है, गौर तलब है। इसके अलावा ना किसी मसलक को छेड़ना मकसद, ना किसी फ़िरके के साथ कोई हमारा बुगज़ है। सब मुसलमान हैं, हम सब इस्लाम के नाम पर इस किताब को और अल्लाह के नबी की बात को पढ़ते पढ़ाते हैं। लेकिन बाज़ लोग लाइल्मी की वजह से, ना समझी की वजह से बाज़ दफ़ा कब्रों, जिसको बाज़ दफ़ा वो मज़ारात भी कहने लग जाते हैं, और बाज़ दफ़ा उसके ऊपर जो मुख्तलिफ काम करते हैं उसको अगर हम सामने रखें तो कुछ खिलाफ़ शरा काम करते हैं। पहली बात यहाँ ये समझ लीजिएगा कि जो नेक लोग गुजर गए वो बहुत नेक थे, वो सब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में चूर थे, उन्होंने हमेशा लोगों को अल्लाह से जोड़ा। अब लोगों के लिए मुतवक्के चीज़ क्या थी कि वो भी वही काम करते, लेकिन लोग उनके साथ वो काम उन जैसे करने की बजाय उन्हीं का पल्लू पकड़कर या उन्हीं के वसीले से दुआएं कर कर आकर जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हो गए। आज अमूमन मैं सबकी बात नहीं करूंगी, आप देखिए कि कवाली का लफ्ज़ जहाँ भी आप करें तो बाद वह बड़ी रोमांटिक किस्म की, यानी रोमानवी कवालियाँ जहाँ इश्क और मोहब्बत की बातें और अल्लाह से मोहब्बत में शिर्क तक आ जाता है। अमूमन कब्रों के इर्द गिर्द आपको ऐसी कवालियों की मजलिसें लगेंगी, वहाँ आखरत की याद कैसे आएगी? बाद जब ढोल ढमक्के की थाप पर नौजवान लोग, कभी अपने मलंग और मलंगनियों का नाम सुना वो धमाल डालते हैं, वहाँ किसी को मुनकर नकीर का ख्याल कैसे आएगा? जहाँ आराइश और हुस्नो नुमाइश हो और कई दफ़ा वहाँ बुराई के अड्डे बने होते हैं, तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान अजाबे कब्र या सवाबे कब्र की फ़िक्र करे। ये काम तो थिएटरों फिल्मों में अच्छे लगते हैं, कब्रों पे तो ये काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और वहाँ गाने बजा कर उसके ऊपर धमाल डालना यहाँ मौत की याद नहीं आती। बाज़ जगह तो देखा गया कि जवान लड़कियाँ अपने आप को डिवोट कर देती हैं और ऐसी कब्रों पे जाकर फिर वो खुले आम मर्द औरत के अख्तलात के साथ होते हैं। तो सारी बात का खुलासा कह लीजिए कि जहाँ भंग हो और चर्स हो वहाँ सफ़रे आखरत की बात कौन करेगा? जहाँ दिन रात नजराने वसूल करने और दौलत जमा करने का कारोबार अरूज पर हो तो वहाँ फ़िक्रे आखरत का वास कौन करेगा? हम किसी का भी नाम लिए बगैर अगर चंद चीज़ें देख लें कि जो हमारे कल्चर में हैं, बहुत आम तौर पे हैं, वहाँ लोग क्या करते हैं, आपको शायद हैरत हो रही होगी ये बातें सुनते हुए, लेकिन अल्लाह ना करे कभी जाना पड़े तो जाकर देख लीजिए। बहुत मारूफ मज़ार हैं, लाहौर में भी एक मज़ार है जिसको लोग बाबा फरीद का मज़ार कहते हैं, पाक पतन में है। तो वहाँ से मैं आपके सामने कुछ इक्तबासात पढ़ के सुना देती हूँ, इस सोच के साथ कि शायद आपको मुझे यकीन आ जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि आप कभी नहीं गए, तो कभी जाइएगा भी नहीं, क्योंकि आपको मुझे वहाँ जाना ज़ेब नहीं देता। लेकिन ये एक रिपोर्ट है कि अप्रैल 2001 में बाबा फरीद के मज़ार, जो कि पाक पतन में वाक़े है, उर्स के मौके पर बहिश्ती दरवाजे से गुजरने के ख्वाहिशमंद हजूम में से 60 अफराद अचानक भगदड़ मच जाने से हलाक हो गए। इसकी वजह ये बताई गई कि दरबार के सजादा नशीन, सजादा नशीन कहते हैं जो बैठते हैं वहाँ, को हुकूमत दरबार की खिदमत के लिए 1.5 लाख सालाना ग्रांट देती है, जबकि सजादा नशीन बहिश्ती दरवाज़ा खोलने से पहले इंतज़ामिया से कई घंटे बहस फरमाते रहे कि इनकी ग्रांट 1.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जाए, तब वो दरवाज़ा खोलेंगे। चुनाचे दरवाज़ा खोलने में बहुत आखिर हो गई और दरवाजे के करीब रश पड़ने की वजह से ये हादसा हुआ। यह रिपोर्ट जो आपको पढ़ के सुनाई है ये है मजला दावा, सफ़र का महीना 1422 हिजरी और मई 2001 लाहौर पाकिस्तान का। ये हो रहा है, ये एक बड़ा तारीख बाब है इस पाकिस्तान का, अल्लाह इसको पाक ही रखे। जिस नाम पे इसको लिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको सामने रखिए। आज 14 अगस्त भी है, लोग जश्न मनाते, आज़ादी के मनाते, हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह इसको पाक कर दे हर तरह की करप्शन से, शिर्क से, बिदअत से, रिश्वत से, और कोरोना से भी पाक कर दे। और इसी तरह हमारे मुसलमान जिस जिस मुल्क में हैं अल्लाह ताला उनको आफियत में रख दे। फिर इसी तरह एक और रिपोर्ट है कि ज़िला भावलपुर में मुहकमुद्दीन मेराई के सालाना उर्स पर आने वाली भावलपुर यूनिवर्सिटी की दो तालिबात को सजादा नशीन के बेटे ने, सजादा नशीन जिसको आप कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग की बाद अब कोई उनकी जगह गद्दी पर बैठा हुआ है, उनके बेटे ने अगवा किया, जबकि मुलजिम का बाप सजादा नशीन मंशियात फरोख करते हुए पकड़ा गया। मंशियात समझते हैं, ड्रग्स। ये रोज़नामा खबरें की रिपोर्ट थी, लाहौर, 15 अक्टूबर 1992। आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको कोई बहुत अब्बस बातें नहीं बता रही, ये खबरों में आई हुई चीज़ें ही हैं जो कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। फिर इसी तरह रायविंड में बाबा रहमत शाह के मज़ार पर उर्स में वैरायटी प्रोग्राम के नाम पर लगाए गए 7 कैंपों में महाफिल मुजरा जारी हैं, यानी ख़वातीन का लाइव रक्स और नाच गाना। दर्जनों नौमर लड़कियां फुहश डांस करके तमाशबीनों से दादे ऐश हासिल कर रही हैं। तमाशबीन नए नोटों की घटियां लेकर यहां पहुंच जाते हैं और रात के 2 बजे तक घुंघरों की झंकार पर शराबियों का शोर सुनाई देता रहा। साइकिल शोज़ प्रोग्राम में नौमर लड़के लड़कियों के रूप में डांस करके हम जिन्स परस्ती की दावत दे रहे हैं। उर्स में जुआ, शराब नोशी और असलहे की नुमाइश सरेआम है। शहरियों के एहतजाज के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये खबर थी रोज़नामा नवाए वक्त, लाहौर, 6 अगस्त 2001 की। इसी तरह कुछ और भी चीज़ें हैं, पढ़ने में भी अच्छी नहीं लग रही, मेरा तो दिल नहीं कर रहा आपको सुनाऊं, लेकिन मजबूरी यह है कि जब आप कोई एक टॉपिक ले कर बैठते हैं तो आपको हर एंगल देना पड़ता है, वरना क़यामत के दिन जवाबदेही होगी कि हमने किसी के खौफ या किसी के डर से या किसी की नाराज़गी की वजह से हक़ को तो नहीं छुपाया। इसमें हमारी अपनी कोई बातें नहीं, ये वही चीज़ें हैं जो खुद वो लाखों की तादाद में छाप कर पूरे मुल्क में फैलाते हैं, लेकिन ये सब हकीकत है। देखिए, इन बुज़ुर्गों की मोहब्बत अपनी जगह, इनका कुर्ब इलल्ला अपनी जगह, लेकिन आज उनके नाम पे अगर ये सब करेंगे, क़यामत के दिन वो कभी खुश नहीं होंगे। ये तो आप कुरान पाक जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। इसी तरह दाता मेले की आड़ में मुजरे, फुहश गानों पर गर्मा गर्म डांस, पुलिस और इंतज़ामिया के तावन से दर्जनों तवायफों का मुजरा और शोज़ जारी हैं। फुहश गानों पर हैजान अंगेज़ रक्स देखने के लिए 10 साल बच्चे से लेकर 70 साल बाबे सैकड़ों की तादाद में आते हैं। चर्च का धुआं फुहश फिक्रेबाजी और भंगड़ा माहौल को मज़ीद गर्मा देता है। 100-100 के नोट निछावर किए जाते हैं। एक तवायफ और गुलकार ने यानी नाज़ेबा हरकत की, नौजवानों ने अपनी अपनी औरतें बांट रखी थी, वो नाम पुकारते तो वो औरत स्टेज पर आकर उनका दिल लुभाना शुरू कर देती। एक मौके पर रस करती हुई औरतें, यानी इस तरीके से उनके मनाजिर थे कि तमाशे ही खड़े हुए और इस हंगामे में सैकड़ों कुर्सियां टूट गईं। ये खबर है रोज़नामा खबरें की, शाहराए बहिश्त, अमीर हमज़ा, सफ़ा नंबर 79 पे। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करना चाहती, वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। अगर इन चंद चीज़ों से आपको सिर्फ ये अंदाज़ा हो गया हो कि जो लोग चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, जो हाईजैकिंग करते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं ना, तो इसी तरह कुछ लोग दीन के नाम पर और ऐसी चीज़ों में भी इतने गलत किस्म की तरफ चल पड़ते हैं कि अल्लाह की पनाह और अल्लाह की पनाह। और इसमें अखलाक से गिरी हुई चीज़ें, कोई कल्चर इसको पसंद ना करे, और बस दफ़ा ऐसे लोगों को सरकारी पनाह हासिल होती है, उनके पीछे बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, वो कुछ भी कर लें, कोई कुछ करे। बाज़ लोग ख़वातीन के जिस्म पर तावीज़ लिखते हैं, यानी उनके नेकेड बॉडी के ऊपर तावीज़ लिख लिख कर देते हैं। ये सारी खबरें मेरे पास मौजूद हैं जो मैं इस महफिल के तकद्दस में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन यहाँ याद रखिएगा ये चंद चीज़ें, जहाँ कब्रों के नाम पर आप उसको मज़ार कहें, खानकाह कह दें, आस्ताना कह दें, लेकिन अल्लाह के नबी उसको कब्रिस्तान कहते थे। इस्लाम में तो अकेली कब्र पसंदीदा भी नहीं है, इसीलिए कि उसी से फिर शिर्क शुरू होता है। तो आज ये जगह बड़ी पुरकशिश और दिल फरेब हैं, तो यहाँ जाकर फिर मौत कैसे याद आएगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों की जहालत दूर कर दे। किसी का कोई मजाक करना या किसी को लेट डाउन करना मुराद नहीं, दिल की गहराई से दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह, गुनाहों के नाम पर भी बहुत बहके हुए, ऐसे काम करने वाले तो नेकी के नाम पर बहके होते हैं। इस्लाम ने इन सारी चीज़ों को नापसंद किया। इस्लाम में कब्रों पे मेले ठेले लगाना, मज़ार तामीर करना, उर्स लगाना, चिरागां करना, फूलों की चादरें चढ़ाना, कब्र या मज़ार को बोसा देना और इसी तरह से कब्र या मज़ार पर झुकना या सजदा वगैरह करना, ये सब मना। किसी कब्र का तवाफ करना, कुर्बानियाँ करना, खाने खिलाना, साहिब कब्र के सामने अपनी मुश्किलात और हाजात पेश करना, ये ममनू और हराम है और शिर्क अकबर है। इस पे तो आप मेरे से बग़ैर ख़ुद भी जाकर कुरान सुन्नत की कोई भी किताब खोल लें तो आपको समझ आ जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत को इस सारी चीज़ों में भी निकाल दे। जो असल बात है वो क्या है कि हम इस मौत से इबरत लें। आप देखिए कि खैर और भलाई से खैर फूटेगी, और भलाई के ही बीच निकलेंगे, जबकि जब आप बुराई और गुनाह का बीज डालेंगे ना, तो वहाँ से गुनाह ही फूटेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप आम का दरख्त लगाएं और इससे थोर का दरख्त निकला है, और आप थोर की जड़ लगा दें तो उस पर आम लगे। बिल्कुल इसी तरह से आप इन जगहों पर जाकर आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि इन चीज़ों के आम होने की वजह से लोग इल्म से दूर हो गए। सहाबा किराम का मिजाज मुजावराना नहीं था, मुजाहिदाना था। वो इल्म सीखते सिखाते और इसके लिए आगे से आगे चलते। कलम पकड़ाए थे अल्लाह के नबी ने। आज जब कलम पकड़ लेंगे तो तलवार भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला आपको मुझे एक पैगाम देते हैं, और वो क्या कि मौत का पैगाम हमारे नाम। लिखिए ज़रा, मौत आपको मुझे क्या पैगाम देती है? चंद जुमले लिखिएगा कि बिला शुबा मौत एक अजीम हादसा, जिनका कोई जाता है उनसे तो पूछिए। घर के एक फ़र्द की मौत से बाज़ औक़ात कितने ही अमूरे ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाते हैं, कितने मंसूबे अधूरे रह जाते हैं, और कितने हसीनो जमील ख्वाब परेशान हो जाते हैं। कई मासूम बच्चे यतीम हो जाते हैं, कई बूढ़े वालदैन बेसहारा हो जाते हैं, कई बीवियाँ बेवा हो जाती हैं, भाई बहनों के बाजू कट जाते हैं। बड़ा ही दुख का लम्हा होता है, इस तरह भी कैफियत होती है। अब जब कोई मरता है ना, तो उसके पीछे वाले लोगों में अमूमन दो किस्म के रवैये सामने आते हैं, दो रिएक्शन आते हैं। एक तो मरने वाले की जुदाई का गम, ये एक फितरी अमर है, अल्लाह के नबी भी रोए थे। गम होता है, गम करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शरई हदूद के अंदर रहते हुए गम और सदमे का इजहार करना ना तो ऐब है और ना ममनू है। अल्लाह के नबी का अपना प्यारा बेटा इब्राहिम फौत हुआ तो आपने कहा कि या इब्राहिम, हमारी आंखें रो रही हैं, हमारा दिल गमज़दा है, लेकिन हम ज़ुबान से यही कहेंगे कि रदीतु बिल्लाहि रब्बन, कि हम अपने रब की रज़ा पर राज़ी हैं। तो इसमें तो कोई गुनाह नहीं, ठीक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो होती है वो क्या कि मरने वाले के कारोबारे दुनिया की फ़िक्र। घर के किसी एक शख्स के जाती बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं, बस उसकी विरासत की तकसीम, उसकी वसीयत है तो वो, फिर उसके घर को उसके नाम से हटाना, क्या करना, यानी इतने बड़े बड़े मसले खड़े हो जाते हैं बेचारे घर वालों के लिए। अभी हमारी एक बहुत ही अजीज़ साथी हैं, तो सडनली उनके हस्बैंड की डेथ हुई, यानी बिल्कुल सडन रमज़ान में, और बिल्कुल तैयार ही नहीं थे ज़हनी तौर पे, बीवी किसी और जगह थी, बच्चे कहीं और। तो उनसे चंद दिन पहले बात ही तो कह रही हैं कि शौहर की तो वफ़ात थी, वो एक बिग सदमा था, और बड़े सब्र से उस औरत ने माशाल्लाह उसको सहा, और कुरान ही है जिसने उनको सहारा दिया। लेकिन कहने लगी कि उसके बाद से आज तक, यानी 3 माह हो गए होंगे रमज़ान से लेके अभी तक, कहती है मेरे ऊपर उससे बड़े बड़े सदमे टूटे हैं, मैं जिस जिस प्रेशर से गुजरी हूँ, और वो वही होता है भाई बहनों का और जायदादों का और घरों का और फलां का, कहती है कि मैं इसमें थक गई हूँ। शौहर की वफ़ात ने मुझे इतना नहीं तोड़ा जितना बाद में ये जायदादों के मामलों ने तोड़ा। और याद रखिए कि अल्लाह के नबी इसीलिए तो कहते थे कि मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरे हाथ में कुछ ना हो। फातिमा को कोई वरसा नहीं मिला अल्लाह के नबी से, अल्लाह ने फातिमा को भी भूखा नहीं रखा। ये जो हम अपने बाद के लिए मुसीबतें पाल लेते हैं ना, मैं तो इसको मुसीबत कहती हूँ। कल किसी के साथ एक बात हो रही थी, अगर मैं गलत ना कहूँ, यानी आज 2020 है ना, तो कमोबेश 20 साल से वालिद का इंतकाल हो चुका है, और कल वो बेटा शिकवा कर रहा था कि अभी भी मुझे हिस्सा नहीं मिला। तो ये फिर इसी का इंतज़ार है। अब वो बेटा भी बूढ़ा हो रहा है ना, 20 साल में उम्र कहाँ जाती है, उसके बच्चे जो थे ही नहीं अब वो उसके कद के बराबर हो चुके हैं, तो वो फिर उसको नहीं मिलेगा। अल्लाह ना करे कहीं वो उसके बच्चों को भी विरसे में ही ना चला जाए। ये हमारे मुल्क का जुल्म है। हम क्यों इतना अहम मामला अपने मरने के बाद डाल देते हैं, कभी आपने सोचा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी बातों पर हमें पूरी गाइडलाइन दी है, कोई मर जाए तो उसके साथ करो। लेकिन जो चीज़ है, मौत का असल पैगाम किसी के जहन में नहीं आता। गम सदमे में आने में या जायदादों को बांटने में लोगों को मौत की असल याद ही नहीं आती कि ये ज़िंदगी क्या थी, आज थे कल नहीं रहे, कल तक अच्छे भले थे आज किधर चले गए। तो लिखिए, मौत का असल पैगाम ये है, आज उसकी कल तुम्हारी बारी है। लिख लीजिए, अल्लाह ना करे आज के बाद किसी की भी मौत की खबर आए, करीबी प्यारे गैर की, तो जब किसी की खबर आए ना, तो खुद को उर्दू में ये जुमला बोलिए, लिख के रख लें कहीं, उस वक्त याद रहेगा, आज उसकी कल तुम्हारी बारी है। क्या कहते हैं इसको अरबी में? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाने वाले हैं। ये नहीं याद आता, मौत का फरिश्ता दिन में कई बार आपको मुझे झांक के जाता है। कभी हमारी आंखें खुल जाए ना, तुम्हें समझ आ जाए। अच्छे भले लोग सेहतमंद होते हैं, रात को बिस्तर पर लेटते हैं हस्बे मामूल, लेकिन सुबह उठने की मोहलत नहीं मिलती। आपको क्या पता आज रात का ये बिस्तर आपका आखिरी बिस्तर है। इतना रिस्क, इतना रिस्क, और बंदा इतना मुतमईन। कितने लोग घरों से उम्रे और हज के लिए निकलते हैं, वापस ही नहीं आते। हमारे अपने प्यारों में कोई था तो हज किया, और ऐन हज करके वो कहती हैं कि जब मरवा के दरवाजे से बाल कटवाने के बाद, यानी जो हज के रिचुअल पूरे किए गए, होटल में जा रहे थे, और आप में से जो गए हैं उनको अंदाज़ा है वहाँ मुस्तशफा भी है, यानी बाबू सफ़ा से जब आप आते हैं इधर होटल्स की तरफ, तो हॉस्पिटल के आगे रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी हिट की है, हॉस्पिटलाइज हुए और वहाँ जाके डेथ हो गई। हज करते ही जब उमरा किया था गालिबन, किसको पता था कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। कितनी बरातें घर से निकलती हैं लेकिन वापसी में रोती भी आती हैं कि कोई मर गया, कोई जी गया। अपने कामों में लोग होते हैं, एकदम दिल का दौरा पड़ता है, सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं। तो एक जुमला लिखी है, जिंदगी और मौत में फ़र्क तो बस इतना ही है जितना आज और कल में है। हर रोज़ जब आप सुबह बिस्तर से उठ जाए ना, तो अपने आप को ये पैगाम दिया करें कि शुक्र है जिंदा उठी हूँ, कल पता नहीं उठूँगी कि नहीं, फिर क्या होगा। और अल्लाह के नबी की रिवायत नोट कीजिए, सही बुखारी की बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, आप मेरे से सुन के ख़ुद भी अरबी में लिख सकते हैं, इतने आसान लफ्ज़ हैं। अल यौमा अमलुन वला हिसाबुन व गदन हिसाबुन वला अमलुन। समझ आ गए? आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं, और कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं। बुखारी के अल्फाज हैं। इसी तरह आपने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नसीहत फरमाई थी कि अब्दुल्ला, दुनिया में मुसाफिर या राह चलने वाले की तरह ज़िंदगी बसर करो। और अब्दुल्ला कहा करते थे लोगों, अगर शाम कर लो तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और अगर सुबह कर लो तो शाम का इंतज़ार ना करो। सेहत को बीमारी से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। ये बुखारी के अल्फाज हैं। क्या मुझे आपको ये सारी हदीसें भूल गई हैं? आज लफ्ज़ मौत इतना कसरत से सुनने लगे, खबरें सुने इतने मर गए, इतने गए जंगों में मारे गए, खून से लुथड़ी हुई लाशें दिखा दिखा कर दिल ही सख्त कर दिए। लोग खबरें सुन के उसमें मुसलमानों के खून बहते देख कर भी बाद में कहते हैं, आज मीठे में क्या बनाया आपने, थोड़ा सा जरदई गरम कर दीजिए। क्या मुझे आपको वाकई अपने मरने का यकीन है? लिखिए अपने लिए। मैं सोचती हूँ कि सहाबा में और हम में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। उनको ये यकीन नहीं था कि कल उठना है, वो कहते थे आज ज़िंदगी ख़त्म, कल कुछ नहीं पता। हमारा ये, हम कहते हैं सारी दुनिया ने मर जाने, मैंने बच जाने, देखना मैं बच जाऊंगी, मेरे साथ देखना मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए उम्मीद तो अच्छी रखी है, लेकिन ये दुनिया एक सराय है, यहाँ हम थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर इस दुनिया में अमल अच्छे ना किए तो आगे क्या होगा? अगर आज मेरा आपका मौत का फरिश्ता खड़ा हो तो क्या मैं तैयार हूँ? कभी आपने, मैंने इसके बारे में गौर किया? कल का पूरा दिन लीजिए, चलिए आजकल तो कब्र का बयान पढ़ रहे हैं ना, तो ख्याल आता होगा। अमूमी तौर पे इवन हम दीन सीखने सिखाने वाले भी कुरान पढ़ रहे होते हैं, कभी अहदीस पढ़ाते हैं, कितनी दफ़ा हमें इसका ख्याल आता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ मैंने देखा कि अल्लाह के नबी चटाई पर नंगे बदन सोए हुए थे, यानी ऊपर का कपड़ा उतारा हुआ था, आपके जिस्म मुबारक पर चटाई के निशान पड़ गए। कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, अगर आप फरमाते तो हम आपके लिए अच्छा सा बिस्तर मुहैया कर देते। आपने इरशाद फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़? मेरा दुनिया से ताल्लुक़ तो बस इतना ही है जितना एक मुसाफिर दरख्त के साए तले सस्ताता है और फिर चल देता है और दरख्त को छोड़ देता है। यह अहमद तिरमिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत है। अपने ऊपर लीजिए, अपने घर पे नज़र डालिए, अपनी वार्डरोब को देखिए, अपने डिनर सेटों को देखिए, जूतियों के रंगों को देखिए, पर्सों की तादाद देखिए, उनकी अकसाम देखिए, छोटे बड़े पाउचेस, हैंडबैग, शोल्डर बैग, कैजुअल, नॉन कैजुअल, सब पीछे छूट जाएगा। इस दुनिया में मैं और आप बहुत आर्जी हैं, यह दुनिया सराय है। आप देखिए मुसाफिर हमेशा खाली हाथ चलना चाहता है, अपना पर्स भी उठाकर वॉक करनी पड़े तो बेहतर है क्या वॉक ना करें, दिल करता है कोई ले ले, मैं नहीं कर सकता। तो सराय में चंद घंटों के लिए सस्ताने वाला मुसाफिर क्या कभी वहाँ ज़मीन ख़रीदेगा कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मैं उस ज़मीन पर गुजरूँ जो मेरी अपनी हो? मकान बनाने और कारोबार चलाने की फ़िक्र करेगा? गिर्दो पेश से बेनियाज चंद लम्हे गुजारता और आगे चलता जाता है। ये चंद घंटों की जिंदगी है, इंसान के लिए किस कदर पुरफरेब है। माहों साल गुजरते हैं तो इंसान खुश होता है, मैं जवान हो रहा हूँ, मेरा बच्चा जवान हो रहा है, मेरा पोता बड़ा हो रहा है। हालांकि हर गुजरने वाला लम्हा इसे इसकी मंजिल यानी मौत के करीब किए जा रहा है।